और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। और आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। मैं कहना चाहूँगी अपने लर्नर से, जैसे कि आज हम इस दुनिया में हैं, वो कैसे, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इस दुनिया में हैं, तो आज उसी चर्चा को पहले तो मैं अपने एक्सपर्ट को बोलना चाहूँगी कि आप बताएं कि आज हम इस चैप्टर में क्या बच्चों को, बच्चों के साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम भी है। तो उनके जो मैम, हम चाहते हैं कि इस दौरान हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके ही बच्चों को बताएं कि वो अपनी तैयारी करें, और जहाँ उनको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज हैं वो हमें कॉल करके पूछें।
ज़रूर। अच्छा संगमित्रा, आपने बताया कि ये जो लेसन है ये डिफ़िकल्ट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और बच्चों को इसे जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आपको ये तो पता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और आपके भाई के बच्चे या बहन के बच्चे हो सकते हैं घर में। इन सब के बीच में एक रिलेशन है, दादाजी के बाद आपके पापा, पापा के बाद आप, और आपके बाद आपके बच्चे आगे होंगे। ये होता कैसे है? दिस इज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और जैसा संगमित्रा मैडम ने बताया, प्रजनन। नाउ यू आर वेल अवेयर दैट अ फैमिली कंटिन्यूज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, एंड ऑल्सो दैट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वंस ओन काइंड एंश्योर्स द कंटिन्यूएंस ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वट डज इट मीन चिल्ड्रन? A cow will produce a cow, horse will produce a horse, and dog will produce a dog, and man will produce man. So the same species is continued. In this session, we will learn how new organisms gain life, grow, and become ready to give rise to another generation of similar individuals. You will also learn during the discussion the importance of reproduction, reproductive health, and hygiene, and also how to prevent the spread of sexually transmitted diseases. So we are going to discuss many important points here. You must have heard from your parents what a joyful event it was when you were born. Everybody was happy. And also you must have heard your aunt or mother saying that you were so different when you were born and now you look so different because you have grown into an adult. Bacterial and protozoan offsprings may be produced by a single individual. This is termed asexual reproduction. Children, you are aware of the fact that we have two kinds of reproductions, asexual and sexual. In asexual reproduction, we have only one parent, and sexual reproduction, we have two parents. Certain animals and many plants reproduce asexually. When two individuals are involved, as I told you, it is sexual reproduction. In sexual reproduction, male gamete fuses with female gamete to mark the beginning of new individual. This is more common mode of reproduction in plants and animals. And also it has some more significance compared to asexual reproduction. We will first try to understand what asexual reproduction is. Reproduction by single individual takes place in many ways in lower organisms like bacteria and protozoa and some algae. In plants, asexual reproduction is by vegetative propagation. Animals like sponges and hydra reproduce both asexually and sexually. Now, we can know the asexual reproduction in lower organisms. There is binary fission. There are many types of asexual reproduction. One is binary fission. A cell may divide to give rise to two individuals and lose its own identity, as in binary fission that takes place in amoeba and bacteria. So the original parent is not seen, but now the parent is seen in the form of two amoebae or two bacteria, daughter bacteria. And the method is budding. And the asexual mode of reproduction. In budding, a bud forms from the body of the mother cell and remains attached for some time. The parental nucleus elongates and then divides into two, one of which moves into the bud. Good example is yeast. Also, you must have seen it in हाइड्रा. इन एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा विच आर मल्टी सेलुलर, अ बड अराइजेस फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉर्मली फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इनलार्जेस एंड देन डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी आफ्टर ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड एंड विल गिव राइज टू न्यू हाइड्रा. दे कैन बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एल्गी सच एज क्लेमाइडोमोनास डिवाइड सक्सेसफुली टू फॉर्म 4 to 8 स्पोर्स विद इन वन सेल. ऑफकोर्स स्पोर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फॉर रिप्रोडक्शन इन फंगस, मॉस एंड फर्न. स्पोर्स आर सिंगल सेल्स विच अपॉन देयर रिलीज फ्रॉम द पेरेंट प्लांट डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल्स.
So, अच्छा, मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे लर्नर्स को बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट जो है इन लोअर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है. और आई थिंक मैम ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे लर्नर्स के लिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन.
बताइए.
मतलब ये एक मैं जो बता रही हूँ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन जो बताया है इस टॉपिक के बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक अहम टॉपिक
है, हिस्सा है. और बच्चों अगर ये आएगा एग्जाम में जब भी आएगा तो जस्ट डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिस्कस 3 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन यू फाइंड इन हाइड्रा और व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन यू फाइंड इन अमीबा. दैट इट कैन कम इन सो मेनी डिफरेंट वेज.
और मेरे ख्याल से इनको डायग्रामेटिकली भी अगर इसको दिखाया जाएगा तो उनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे.
बल्कि आपने अच्छा किया ये पूछ के, इसको डायग्रामेटिकली दिखाना जरूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ फिर 2 में डिवाइड हुआ, क्योंकि बच्चों ये तो मालूम ही है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है.
मैं आपको एक अपना एग्जांपल देना चाहूंगी मैम कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस दौरान हमारी मैडम ये कहा करती थी कि अगर कुछ ना हो, अगर तुम कॉन्टेंट नहीं लिख पा रहे हो या तुम उस टाइम तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट डायग्राम और उसको लेबल्ड करके भी आप करके जाओगे तो हाफ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे.
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम की बहुत अहमियत है. और अगर आपने डायग्राम बहुत क्लियरली बना के लेबल कर दिया है तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है.
बिल्कुल,
मतलब 50% मार्क्स तो ऐसे ही आपके हाथ लग गए. और अगर आपने कुछ लिख भी दिया 2-4 लाइनें तो डायग्राम को देखते ही एग्जामिनर जो है उसके हाथ से नंबर निकल आते हैं. तो हमारे बच्चे क्या नंबर चाहते हैं, अच्छा लिखना और अच्छा रिजल्ट. तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो हमारे लर्नर्स को हमारी एक जिसे कहते हैं कि हम बताना चाहेंगे उन्हें कि एग्जाम के टाइम आप डायग्राम्स भी अच्छे से मतलब एक बार घर में प्रैक्टिस करके जाएं और हो सके तो डायग्राम भी, हो सके नहीं बल्कि
बनाना ही और पेंसिल से बनाना है, पेंसिल नहीं. और आपने की जो NIOS की बुक्स है उसमें डायग्राम बढ़िया दिए हुए हैं और सिंपल सिंपलीफाइड वे में दिए हुए हैं, आप सिर्फ उससे ही सीख लें.
बिल्कुल,
कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी बुक में दिए हुए हैं बस वही बना लें तो बहुत है. और पेंसिल से बनाएं और पेंसिल से ही उसे लेबल करें.
बिल्कुल. अब हम बात करेंगे, अभी मैम ने हमें बताया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, अब हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स
जिसको हम इसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ इन नेचर बच्चों न्यू प्लांट्स मे अराइज फ्रॉम रूट, स्टेम or leaves, that is from the vegetative part of the plant, as you must have studied in your book already. This form of sexual reproduction in plants, asexual reproduction in plants, is termed vegetative propagation. In other words, vegetative propagation is means of asexual reproduction in plants. New plants may be formed from roots or leaves or stem, as we have already told you. Now, there can be artificial propagation of plants also. Humans have taken hints from natural methods of vegetative propagation to grow many plants through artificial propagation. Various methods by which farmers and nursery owners multiply desired plants using the method of artificial propagation. With this help, you can produce so many plants or saplings in very short
time. मतलब हम जैसे कहते हैं किसी भी पेड़ की एक ब्रांच लेके अगर हम उसको, जैसे मनी प्लांट का भी पेड़ जो होता है पौधा, उसको अगर उसकी एक ब्रांच भी अगर हम दोबारा रीग्रो करना चाहें,
एक पत्ता भी ले लिया अगर उसमें एक रूट है, नोड,
नोड है हाँ.
तो उसमें से निकल आएगा.
तो
एक नोड
एक,
होना जरूरी
हाँ.
है. या पुदीना की जो डंठल है वो आपने लगा दिया,
अच्छा.
या आलू में जो आंख है वो लगा दी, इन सब से आपका पौधा बन जाएगा. तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन फास्ट भी है और सिंपल भी है. देयर आर अदर मेथड्स ऑफ एसेक्चुअल प्रोपेगेशन. इन द लेबोरेटरीज रिसर्चर्स हैव रेज्ड ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट थ्रू टिश्यू कल्चर. यू हैव हर्ड अबाउट डॉली शीप, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हर मदर रेज्ड थ्रू क्लोनिंग. अदरवाइज इन शीप यू विल फाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट डॉली वॉज मेड थ्रू एसेक्चुअल प्रोपगेशन. नाउ माइक्रो प्रोपगेशन, रिसर्चर्स हैव स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर. एवरी लिविंग सेल ऑफ एवरी पार्ट ऑफ प्लांट हैज बीन फाउंड टू बी टोटिपोटेंट. चिल्ड्रन, वॉट डू वी मीन बाई टोटिपोटेंट? दैट इट कैन प्रोड्यूस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. लाइक वेन इन ह्यूमन द ओवा इज फर्टिलाइज, दिस इज नाउ zygote. That zygote is totipotent because from that zygote you got your all the organs in the body, but that totipotency we lose as we start growing. It has been the practice to give rise to more plants. Now we should try to understand that how it happens. From a piece of plant, say root of carrot or a leaf, cells are now to be cultured in adequate nutrient solution to form an undifferentiated mass of cells called callus, which can then give rise to new plantlets. The raising of plants through tissue culture is termed micropropagation. It is sometimes done for certain species which we feel may get lost in course of time. I would like to say few words about cloning. A clone is the genetic copy of the parent. The sheep Dolly, when born, was an exact copy of her mother. Her mother's udder cells, nucleus, was transferred into the egg of a surrogate mother. After removing the nucleus, Dolly's mother provided her genes while the surrogate mother provided the womb. Dolly to develop from an embryo to full-fledged individual. Of course, such individuals who are produced like Dolly, they have certain limitations and their life expectancy is also less. But yes, from research point of view, this is very important step. Now, we come to sexual reproduction, where two parents are required. You already know that sexual reproduction requires fusion of male and female gametes. We shall also understand how sexual reproduction takes place in flowering plants. So first we discuss the flowering plants. The reproductive organs of flowering plant is the flower, stamens or androecium, which produce pollen, are the male part. The pollen grains contains male sex cells. There may be several stamens in each flower. Each stamen or androecium has two parts. The upper part is anther, which bears pollen. It is held on the lower part called filament. The pistil or gynoecium is the female part, and its basal part is the ovary carrying eggs or ovules or female sex cells. The parts of the pistil are the stigma, style, and the ovary. In most plants, each flower bears both male and female parts. They are called bisexual. In some plants, there are male flowers with only androecium and female flowers bearing only gynoecium, and they are unisexual. Now, in case of flowers, and the important step is pollination and fertilization, how pollen should reach up to ovule. For fusion of their nuclei, pollen and ovule are brought together by several agencies like wind, that means pollination by wind, or water, or insects, sometimes human. This transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. Self-pollination means on the same plant within the same flower and cross from one flower to other flower. So in pollination or self-pollination, the pollen of flower falls on its own stigma and fertilizes the ovule. In cross-pollination, pollen from one flower falls on the stigma of another flower of a different plant of the same species and then fertilizes the ovule of that flower. Agents like wind, water, or insects help to transfer pollen from one flower to another. For fertilization or fusion of nuclei of pollen and ovule, pollen is brought by any pollinating agent on the stigma of the pistil. Each pollen grain, now children, this is important point, each pollen grain forms a pollen tube, and pollen grain nucleus reaches the ovule as a pollen tube pushes through the pistil. The fertilized ovule develops into seeds, which are capable of germinating into seedlings and a new plant. So ovary will develop into fruit and ovules will develop into seeds. Once seeds are formed, they get dispersed or are carried away from the parent plant and then germinate under favorable conditions.
तो अभी हमने बात की सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हाउ इट टेक प्लेस इन प्लांट. तो मैम, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लर्नर्स को कि उन्हें किस पॉइंट पे और किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फसाइज देना चाहिए? जैसे मैंने, हम लोग जनरली न्यूज़, मतलब इसमें क्वेश्चन पेपर्स में देखते हैं कि एक डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन.
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये तो. अगर क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ में आया, पॉलिनेशन में, कि वो एक ही फ्लावर में दोनों चीजें हैं तो उसी में हो गया फर्टिलाइजेशन, और बाइसेक्चुअल फ्लावर हुआ वो, और यूनिसेक्चुअल फ्लावर है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचा वो किसी एजेंट के थ्रू, हवा से या किसी एनिमल से, या हम ही ने कुछ खा के बीज फेंक दिया कहीं पर, तो जर्मिनेट हो जाएगा. लेकिन पॉलिनेशन होना जरूर पड़ेगा, उसके बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा.
अच्छा, तो मैम ये भी तो आ सकता है कि इस तरीके का प्रश्न भी हमारे लर्नर्स से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन.
बिल्कुल सही कहा. और उसमें पोलन ट्यूब आ जाएगी. हाँ. क्योंकि ये स्पेशल फीचर है प्लांट में कि पोलन ग्रेन तो आ गया स्टिमक पे, और ओव्यूल बिल्कुल बेस पे रखा हुआ है, इतना लंबा रास्ता उसे तय करना है, वो कैसे पहुंचेगा. तो वो एक ट्यूब खुद ही बनाएगा, वो अपना रास्ता बनाएगा, उसी के रास्ते पड़ता जाएगा, वो एक ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचेगी, उसी के रास्ते वो पहुंचेगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है. हमको ये देखना चाहिए कि प्लांट्स ने कैसे कैसे रास्ते निकाल लिए हैं अपना काम चलाने के, अपना प्रजनन का प्रोसेस चलाने के लिए. उन्होंने कितने तरह के रास्ते लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने तरीके. बच्चों, अब हमारे पास उंगलियां हैं, हाथ है, नाक है, कान है, ऐसा तो नहीं होता ना, हमने उंगली का एक थोड़ा सी उंगली काट दी तो उसमें से एक पूरा इंडिविजुअल निकल आया, या उंगली दोबारा निकल आई. लेकिन प्लांट्स में ये पॉसिबल है कि एक छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट निकल आया. तो प्लांट ने बहुत मेहनत की है अपने लेवल पर इस बात के लिए कि वो इस नेचर में सरवाइव कर सके, और उन्होंने स्ट्रगल किया है इसलिए सरवाइव किया है. हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए. अगर ये प्लांट्स स्ट्रगल ना करते तो हम स्ट्रगल कर रहे होते ऑक्सीजन के लिए. इससे हमें ये भी समझ लेना चाहिए बच्चों के, हमें पेड़ नहीं काटना क्योंकि पेड़ बहुत मुश्किल से बनते हैं, और जो पॉलिनेशन है वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हो रहा है फ्लावर के अंदर, तो चलते फिरते हमें फूल नहीं तोड़ना. आपके स्कूल में या घर में या रोड पर या पार्क में बहुत से पौधे होते हैं, उनसे फूल निकले होते हैं. कई बार टेम्पटेशन में आप एक आध फूल तोड़ लेते हैं, तो आप सोचिए आपने एक रिप्रोडक्शन का एक रास्ता थोड़ा सा कम कर दिया, नहीं तो वो पॉलिनेशन हो जाता और बीज बन जाता और फिर और आगे पेड़ बन जाता. तो उस तरह से हमको थोड़ा सोच के चलना चाहिए।
बिल्कुल मैम, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अपने लर्नर से कि जब हम छोटे थे तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो ये कहा करते थे कि जब हम कभी फूल तोड़ते थे या कुछ पेड़ पौधे को हाथ लगाते थे तो कहते थे कि नहीं, इनको अभी मत ऐसे मत करो, ये बड़ा होके तुमको फल देगा।
हाँ।
तो वही बात है, फूल देगा, फल देगा,
जब फूल होगा वही तो फल बनेगा।
हाँ, तो बिल्कुल उस टाइम हमें रोक दिया जाता था।
हाँ।
तो आपकी ये सीख मुझे अपने पिछले वक्त में ले गई।
और इससे भी पिछले वक्त है, मैं आपको ले चलती हूँ। पुराने जमाने से पूजा वगैरह की जाती थी, तो उन्होंने हरदम किसी देवी देवताओं के साथ कुछ एनिमल्स लगा दिए और कुछ पेड़ पौधों की पूजा की, नीम की पूजा की, तुलसी की पूजा की। क्यों? कि यू रिस्पेक्ट प्लांट्स एंड यू रिस्पेक्ट एनिमल्स। दैट वॉज देयर वे ऑफ कंजर्विंग एनवायरमेंट। आप किसी भी केव्स में जाएं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की केव्स को देखें, तो उनके केव के ऊपर दो चीजें जरूर बनी हैं, एक हिरन या हाथी और एक कोई बड़ा सा पेड़ छाया वाला। इसका मतलब उनको पता था, और एक सूर्य, कि सूर्य इंपॉर्टेंट है, प्लांट इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स इंपॉर्टेंट है। गाय की पूजा करो, ये सब हमको सिखाया गया। किस लिए? कि हम एनिमल्स के लिए ध्यान रख सके।
जैसे अभी बात हुई मैम, हम लोग बात कर रहे थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और फिर हमने बात भी की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है
जितना कोई भी दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन में है। रिप्रोडक्शन में बहुत से टॉपिक आ जाते हैं, ए सेक्सुअल एक तरफ आ गया, सेक्सुअल आ गया, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, और बीच बीच में डायग्राम्स आ गए।
तो अब हम जब एनिमल की बात करेंगे तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे।
बिल्कुल करेंगे,
बिल्कुल। चलिए मैम,
मौका मिला तो पॉपुलेशन की भी बात करेंगे।
बिल्कुल, रिप्रोडक्शन हो रही है तो पॉपुलेशन भी बढ़
तो
रही है।
चलिए, वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है। नाउ लोअर एनिमल्स एज यू नो लाइक द स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल मेथड्स। दे कैन हाउएवर ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इन ऑल एनिमल्स the female produces eggs and the male produces sperms. An egg and a sperm fuse to form the zygote, which then develops into the embryo and the embryo into a full-fledged individual. The development may occur partially or completely inside the egg. Such animals that lay eggs include fish, frog, reptiles and birds, and are thus called oviparous. Children, you know, oviparous means produced ova. And now this ova will develop, egg will develop outside the body of the mother, like in case of fish, frogs, reptiles and birds. But in mammals, to which we also belong, and cow, cat, rat, buffalo, horse, elephant, now the baby develops inside the mother's womb, and they are termed viviparous, means baby will come out only after fully formed. So that's the difference between oviparous and viviparous. Oviparous is comparatively primitive feature in terms of evolution, and viviparity is advanced feature. That is why the mammals have it. In tapeworms and earthworms, both female and male sex organs are in the same individual. Such individuals are called hermaphrodite. Sexes are separate in other animals, and the male individual has male organs, sex organs like testes, while the female will have ovaries. Humans also belong to the animal kingdom, and they are mammals and hence are viviparous. We straight come to reproduction in humans. The period from infancy to reproductive maturity in humans includes childhood and adolescence. The adolescence is a very, very critical period in life of girls and boys. The stages will include, of course, to start with infancy, childhood, and then adolescence, then adulthood, and finally aging. So adolescence falls between childhood and adulthood. From child you become adult, that is adolescence. Now adolescence in human beings. द बॉडी अंडरगोज नेचुरल चेंजेस एज वन ग्रोज इनटू द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ. दीज चेंजेस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 10 टू 11 एंड लास्ट टिल 18 टू 19 ईयर्स ऑफ एज. द स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एडोलेसेंस. द टाइम पीरियड वेन चेंजेस अकर इन ह्यूमन मेक देम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हेंस दिस पार्ट इज कॉल्ड प्यूबर्टी. नॉट ओनली ह्यूमंस बट नो ऑर्गेनिज्म बिकम्स मेच्योर एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन सून आफ्टर बर्थ. नीड्स टू रीच मैच्योरिटी एंड एडल्टहुड इन ऑर्डर टू डू सो. द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड मैच्योरिटी इज वेरी शॉर्ट इन एनिमल्स, परहैप्स इट इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमंस. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल्दो दीज चेंजेस अकर इन ऑल एडोलेसेंट्स, द टाइमिंग एंड पेस ऑफ चेंजेस मे डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. दिस जस्ट गोज टू प्रूव दैट ईच ऑफ अस इज यूनिक. Now, what are the changes which you find in adolescence? I am sure children, most of you fall in this category. Now, physical changes are increase in height. Bones will elongate, muscles will develop, height will increase. Then there are changes in body shape. Chest and shoulders broaden in boys. Increased fat deposition below the waist, around hips in case of girls. Then other changes, change in voice. In boys, in case of boys, voice box or larynx enlarges and is visible as the Adam's apple. Then there is development of sex organs during adolescent age. In both the females and the males, sex organs mature during adolescence. And there is growth and functional ability of sex organs is also achieved. Then there is appearance of secondary sexual characters, like armpits will have hair, pubic hair we call it, breast develops in girls, and facial hair begins to grow in boys, that is beard and mustaches. It will be important here to talk little bit about menstruation. In human females, reproductive phase begins at puberty and lasts till the age of 45 to 50 years. Why I am taking this topic here? Because this also begins during the adolescent period. A girl is born with fixed number of ova, that is X. However, these begin to mature only at puberty. One ova matures at a time and is released from the ovary once in 28 to 30 days, and that is why your menstrual cycle is of the length 28 to 30 days. This happens under the influence of a hormone from anterior pituitary, FSH or follicle stimulating hormone. One ova or egg is shed alternately from each ovary every month. So children, you should understand that this month menstrual cycle is controlled by right ovary, then next month by left ovary. That means every ovary is controlling menstrual cycle alternate month. The egg or the ovum travels down the fallopian tube to reach the uterus. Also, you must know children that fallopian tube is a site for fertilization. That is quite close to ovary. Fertilization will not take place in the uterus. It will take place in the fallopian tube. At the same time, the wall of the uterus under the influence of and the hormone from anterior pituitary called LH or luteinizing hormone thickens to receive fertilized egg. But every month fertilization is not taking place, but the uterus is prepared. If there is no fertilization, the thickened lining of uterus and blood vessels are shed off and cause bleeding. This is called menstruation and is also known as periods, which will last around 4 days. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मीनार्की. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एज यूजुअली बिटवीन 45 इयर्स एंड 55 इयर्स इज टर्म मीनोपॉज. सो यू स्टार्ट सेक्चुअल मेच्योरिटी विद मीनार्की एंड यू एंड सेक्चुअल लाइफ विद मीनोपॉज. एडोलेसेंस मे बी बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन बट दे आर नॉट रेडी टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंटहुड. एडोलेसेंट गर्ल्स आर नॉट फिजियोलॉजिकली मैच्योर फॉर चाइल्ड बियरिंग एंड मेनी अ टाइम बोथ द एडोलेसेंट मदर एंड हर बेबी सफर फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस. एडोलेसेंट पेरेंट्स आर नॉट लाइकली टू हैव गुड opportunities of education and livelihood and may not be able to provide for their child all the necessities. Even though the legal age at marriage is 18 for girls and 21 for boys, child marriage is still a problem in our country. Data from National Family Health Survey tells us that 27% young women and 3% young men in the age group of 15 to 19 were married at the time of the survey. Furthermore, findings from the same survey show that 30% females in the age group of 15 to 19 have had live birth by the age of 19 years. So children, what does it show? That maturity and immediately maturity is followed by pregnancy and the baby. And now this adolescent is not capable of handling the pregnancy and the baby, and it will have adverse effect on the child of mother, the mother of the child. Now there are psychological changes as well. Mental, emotional and intellectual maturity develops gradually. Adolescents are capable of abstract thinking. They experience mood swings. They become self-conscious. Self-image and identity become important for them. Friendship is very important to them. They start getting interested in one another in a sexual way also. Opinions expressed by peer that are different from their personal beliefs could be a source of stress and anxiety, as it is important for them to fit in with the group norms. Adolescents should definitely enjoy this phase of their lives but also invest in their future. It is important to strike the right balance. Initiating and nurturing friendship and positive relationship is a vital part of growing up. However, it is important that relationships are built on equality, mutual respect and love. Relationships that lack these attributes could be exploitive and cause physical, emotional and psychological harm that may prevent young people from realizing their potential. Sexuality is an important part of growing up, but decisions related to sex and sexuality should be based on appropriate information, an understanding of consequences, and most importantly, a sense of responsibility. Striving for independence is a very important part of adolescence. Young people need to remember that they should be able to take responsibility for their independent decisions. So that is about the adolescence,
because adolescence
is the period where body is growing faster than your mind, and hence there can be conflict sometimes.
तो मैम ने अभी बताया हमें adolescence के बारे में, और अब हम बात करना चाहेंगे मैम, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए हम, क्योंकि चैप्टर अभी लेसन जो है हमारे अभी उसके टॉपिक्स अभी कवर होना बाकी हैं. मैम अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो लेट मी स्टेट कम टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, लेट मी से अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देन टू स्पर्म डक्ट्स और वास डिफरेंशिया, वन इजेकुलेटरी डक्ट एंड वन पीनिस. वेरी नाइस डायग्राम इज गिवन चिल्ड्रन इन योर बुक, विच यू कैन सी द डायग्राम एंड द लेबलिंग एंड अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द मेन ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, टू फेलोपियन ट्यूब्स, वन यूटेरस, वन सर्विक्स, वन वेजाइना. अगेन अ ब्यूटिफुल डायग्राम इज देयर. इन दिस डायग्राम विच यू कैन सी इन द बुक, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर एंड ऑल्सो सेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो देयर टू शो द मूवमेंट ऑफ एग. एज आई टोल्ड यू, fertilization takes place in the fallopian tube, which is nicely shown in the diagram. The female reproductive system is located in the lower abdomen. The organs of female reproductive system and their functions are we are going to discuss. The ovary and oviduct are commonly found in all female animals and the uterus in those who do not lay eggs but give birth to young ones. The steps of reproduction in humans. We know that human gametes, sperms, which is the male gamete, are generated in the testis, and this process is called spermatogenesis. In other words, formation of sperms in the testis of man is called spermatogenesis. And another gamete is a female gamete called egg or ovum, which is a female gamete and is produced in ovary, and the process is called ovogenesis. The nuclei of sperm and egg fuse inside the egg, forming the zygote. This fusion is termed fertilization and takes place in the fallopian tube. Why it takes place in the fallopian tube? Because ova, which is released from the ovary, the life of ova is only 48 hours in female tract. So in 48 hours it can move only up to fallopian tube. It cannot move up to uterus. So sperm has to reach the fallopian tube and fertilize it, otherwise it will disappear in 2 days. The fertilized egg or zygote begins to divide repeatedly, and upon reaching the stage containing cells and a cavity called blastocoel, the stage called blastula, gets embedded in the thickened uterine wall in which many blood capillaries have formed. That means from fallopian tube it is fertilized egg or the zygote which is moving towards uterus and dividing also at the same time. When it reaches uterus, whichever point it touches first, placenta is formed, and that is the link between mother and the fetus for supply of oxygen, supply of glucose or the food, and also excretory matter is given out from baby or fetus to mother's blood, like carbon dioxide, like any other excretory matter. In case fertilization does not occur, the egg disintegrates. The thickened wall of uterus along with capillaries break down, leading to bleeding or menstrual flow, that is menstruation. In human female, menstruation occurs every 28 to 30 days. The embryo, now called fetus, develops into a full-fledged individual in 280 days or 9 months or 10 lunar months inside the uterus, and is born under the influence of a hormone from posterior pituitary called oxytocin. So this was about the male and the female reproductive organs and little bit about fertilization also. Now we come to human population. As you said, when reproduction is taking place, population is increasing. And when population is increasing, we have to do something about our population.
And the natural resources scantness of...
When any baby is born, you have to give food, you have to give clothes, place to live, school to study, college to study, job. So many things are attached with the birth of one child.
Then there would be a need of conservation of natural resources again. And
now when we have to make more schools and colleges and hospitals, then we will cut forest to have the land. Then we are destroying the environment, but then we have to go for sustainable development. That if you are cutting 10 trees, plant 11 trees somewhere else, so environment is not affected.
मैम अभी हम देख रहे थे कि बीच में चाइना की जो पॉपुलेशन है वो अंधाधुन
बड़ी।
बढ़ी थी, मगर अब उस पे काफी रोक लग गई है।
हर एक कंट्री को एक काम करना पड़ेगा, वी नीड चिल्ड्रन टू बी बॉर्न बिकॉज वी नीड देम फॉर एज अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री, बट देयर हैज टू बी कंट्रोल बिकॉज वी कान गो ऑन प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर एवरी चाइल्ड,
बिल्कुल
बट वी वॉन्ट टू प्रोवाइड, सो देयर हैज टू बी सम वे। गवर्नमेंट को ही कुछ करना होगा। कहाँ पे क्या किया गया उसका भी पूरा डिटेल मेरे पास नहीं, लेकिन जैसे कई जगह पे कहा जाता है कि अगर ऐसा किया जाए कि भाई अगर दो से ज्यादा बच्चे हुए तो आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, अपनी पेड लीव लो, या अगर दो से ज्यादा बच्चे हुए तो दो बच्चों के लिए तो आपको मिलेगा जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, बाकियों के लिए नहीं मिलेगी, या आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, या आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, या
बिल्कुल
इस तरह
बिल्कुल
की, ऐसा लोग चाहते हैं ऐसा कुछ हो, लेकिन कहाँ कहाँ अभी किया गया या नहीं वो देखना है, लेकिन कुछ तो करना होगा। वी हैव टू कंट्रोल, डेफिनेटली वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन और आवर कंट्री, कंट्री लाइक इंडिया, वी डेफिनेटली नीड टू डू इट ऑन वार फुटिंग।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा हमारा तबका है जो अनएजुकेटेड है और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है। ऑल्दो काफ़ी सरकार ऐसे काम कर रही है कि जानकारी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही है, बट फिर भी उसके बावजूद भी अभी भी
देखिए
वहाँ पे कुछ
सरकार
कमी
ने
है।
बहुत काम किए हैं, स्कूल में एजुकेशन फ्री है,
बिल्कुल
सरकारी स्कूलों में कपड़े मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलता है, खाना मिलता है, किताबें मिलती हैं, बस्ता मिलता है, कई जगह साइकिल भी मिलती है, कई जगह स्कॉलरशिप मिलता है, और क्या चाहिए,
मिड डे मील भी शुरू हो
मिड डे मील है,
चुका
तो आप कम से कम बच्चे को पढ़ने तो भेज दीजिए। अगर आपको ये समझ बच्चा पढ़ लेगा तो उसे खुद अवेयरनेस हो जाएगी मुझे क्या करना है, और वो खुद आगे घर में बताएगा ये करना है और ये नहीं करना। जैसे मैं पिछली बार बताया था कि एनआईओएस का एक स्टूडेंट गाड़ी में बैठा था और ड्राइवर ने कुछ छोटी सी चीज बाहर फेंकी, उसने कहा गाड़ी पीछे लो और इसको उठाओ, जो कूड़ा सड़क पे फेंका हमारी एनआईओएस की बुक में लिखा है कि आपको ये नहीं करना है।
बिल्कुल
तो जब उन्होंने पढ़ने भेजा तो बच्चे को कुछ समझ में आई, तो उसने ड्राइवर को भी टोका और खुद भी उस काम को किया। यानी एजुकेशन और अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जाके कहीं सफाइयां नहीं कर सकते, लेकिन हम अवेयर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब एनवायरमेंट का पेपर डाल दिया हर एक सब्जेक्ट में, किस लिए, कि बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में पता चले, एनवायरमेंट को हम ही तो खराब कर रहे हैं। ओनली ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल, नो एनिमल नो प्लांट इज इंजरिंग द एनवायरमेंट, सो वी हैव टू लर्न के पॉपुलेशन इज टू बी कंट्रोल्ड।
चलिए मैम,
सो
अब हम
ह्यूमन
आगे बढ़ते
पॉपुलेशन के
हैं
बारे में
ह्यूमन
थोड़ी बात कर
पॉपुलेशन के
लें।
बारे में। हाँ
चिल्ड्रन यू मे बी अवेयर दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 1 बिलियन एंड कंटिन्यूज टू ग्रो। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इंडिया मे ओवरटेक चाइना दैट इज करेंटली द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ 1 बिलियन पीपल वर्किंग टूगेदर कैन अचीव ऑल द डेवलपमेंट गोल्स एंड इवन मोर। हाउएवर इंडिया लैग्स बिहाइंड on several development indicators and needs to make systemic and consistent investments in education, health, employment and social welfare before its vast human potential can be realized. Young people like you have an important responsibility to take the country forward. Now, making informed choices about family size. Because when we talk of population, we are talking about family size. The decisions that individuals make about the size of their families will contribute towards limiting the size of the population of the country. Decisions related to the family size are motivated by people's aspirations and resources. In a large segment of Indian society, there is pressure on the young couples, especially the females, prove their fertility and bear male children. Children, you know, being science student, the sex of the baby is decided by father and not by mother. Children are a valuable component of family, no doubt about it. However, unplanned pregnancies may compromise the health and well-being of both the mother and the child. In addition, if the parents are not ready to provide for the child, both in economic and emotional terms, the child may not get the opportunity for growth and development. All of us recognize that planning is an important part of decision making, but it is important to have correct and appropriate information to make informed decisions. Planning the size of the family and the timing of childbirth helps to achieve better quality of life, as there are likely to be sufficient resources to spend on food, education, health, and well-being of all the members of the family. So, who will decide this? You will decide this. Some of the modern methods for preventing pregnancies, also known as contraceptions, also we are going to discuss if time permits. Contraceptive methods broadly classified into two categories, temporary and permanent methods. With the use of temporary methods, fertility returns after stopping the use of these methods. Hence, they are appropriate to delay the birth of the first child and maybe the next subsequent child. Permanent methods are irreversible for all practical purposes and are appropriate for couples who have completed their families and do not want any more children. Contraceptive methods should be adopted based on the couple's needs and after consultation with trained medical practitioner. In short, I will name some methods, temporary methods like condoms in males, diaphragm in females, like intrauterine devices, IUCD, example copper T, oral contraceptives like pills, and permanent methods like vasectomy in males and tubectomy in females. The government has established a number of health service delivery institutions at different levels where contraceptive methods are available free of cost or at heavily subsidized rates. Clients may also seek counseling and services at these centers. Now I would like to discuss reproductive tract infections and sexually transmitted diseases, that is STDs. Reproductive tract infections, RTI, refers to infections of reproductive organs. These illnesses may occur due to poor genital hygiene, for example, poor menstrual hygiene among girls. Important RTIs include the illness that are transmitted from one person to another during sexual contact and are known as sexually transmitted diseases or STDs. Symptoms, in short, can I tell, Sangmitra, for STDs?
Haan, bilkul, ma'am.
Itching or soreness of genital parts or anus, blisters or sores, lump, rash in urogenital areas, discolored discharge that may be foul smelling from vagina in females and penis in males, pain during urination. Women may also complain of pain in lower back and abdomen. Some infected persons may not show any symptoms and may pass on infection to their partner unknowingly. They are just carrier. You must know that compared to men, women acquire STDs more easily, as the disease-causing organisms can stay inside the vagina for a long time. Women are also likely to be asymptomatic, without symptoms, for longer periods of time after acquiring the infection. Young women are more susceptible to acquire STDs as their vaginal mucosa is immature. So it is important to see doctor if any of the symptoms of STDs occur. Prompt and complete treatment can cure most of the STDs. Untreated STD can lead to infertility. The sexual partner of the infected person should also seek medical advice and treatment, and there is nothing to hide in this. Unless the infected individual is cured, he or she should avoid sexual intercourse. STDs can be prevented by having one faithful sex partner, only one, not multiple, having safe sex with correct and consistent use of condoms, and using contraceptive methods to give gap between the pregnancies and also टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम एच आई वी एंड फ्रॉम एड्स.
हम एड्स के बारे में भी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट
ओके बिकॉज दिस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल कॉन्टेक्ट. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस एच आई वी causes acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS, AIDS, AIDS. HIV is a retrovirus and it will damage the immune system, and once immune system is damaged, you cannot make another. HIV, as I told you, is a retrovirus. Its genetic material is RNA. It destroys vital cells of immune system, making the body vulnerable to several infections. It is estimated that across the world, 30 million adults and 3 million children below the age of 15 live with AIDS. How you know it? How it comes from one person to another? By unprotected sexual intercourse? Infected blood? How it is passed on? Infected syringes, needles? Infected mother to her baby? These are some ways through which it will pass from one individual to another. So this was about HIV and AIDS.